हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। नाना, ऐसे नहीं जाने दूंगा, पहले मेरे सवाल का जवाब दो। तुमने कहा कि चाहती हो तो मुझे, क्या ये सच है? धृति, जो अर्णव की सख्त हथेली में कैद अपनी नाजुक कलाई छुड़ाने के लिए जल बिन मछली जैसे छटपटा रही थी, अर्णव का सवाल सुनकर दिल ही दिल में बोली, हाँ, मैं आपको चाहती हूँ, बहुत चाहती हूँ। आज से नहीं, बहुत पहले से चाहती हूँ। मैंने आपके बिना ये साल कैसे बिताए हैं सिर्फ मैं ही जानती हूँ। दिल की बात दिल में छुपाए उसने अपनी कलाई आज़ाद करवाने के लिए मचलते हुए सवाल के बदले उल्टा अर्णव से ही सवाल कर लिया, आप पति हैं मेरे, क्या मैं आपको नहीं चाह सकती? चाह तो सकती हो, बिल्कुल चाह सकती हो, और मेरी चाहत अपने दिल में जगाने का हक सिर्फ तुम्हें ही है, पर मुझे ऐसा लगता नहीं है। अर्णव की बात सुनकर, मतलब धृति ने अपनी मोरनी जैसी गर्दन घुमाई और आंखें बड़ी बड़ी करके उसे देखने लगी, क्या मतलब? मतलब तुम्हारे व्यवहार से मुझे कभी नहीं लगा कि तुम्हें मुझसे मोहब्बत है, तुमने तो हमेशा बस नाराजगी, गुस्सा और बेरुखी ही दिखाई है। मैं हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा था, तुम तो तब भी मेरे पास नहीं आई थी, तो मैं कैसे मान लूं कि तुम्हें मुझसे प्यार है? अर्णव की बात जैसे ही खत्म हुई, खुद पर लगा ये झूठा इल्ज़ाम सुनकर धृति ने तुरंत ही जवाब दिया, मैं हॉस्पिटल में ही थी। जब से आप हॉस्पिटल में एडमिट हुए हैं, रात के अलावा मैं एक मिनट के लिए आपके वार्ड के बाहर से नहीं हटी हूँ, बस आपसे नहीं मिली थी, क्योंकि एक तो माधुरी और कबीर को मेरा आपसे मिलना पसंद नहीं आता, और मेरी वजह से आप इस हाल में थे, तो मेरे अंदर आपको फेस करने की हिम्मत नहीं थी। धृति की सफाई सुनकर अर्णव ने सख्त अंदाज में कहा, मैं कैसे मान लूँ? और अगर तुम हॉस्पिटल में थी भी, तब भी अपने गिल्ट के कारण थी। प्यार होता तो मेरे पास होती तुम, मेरा ख्याल रखती, पर तुम तो मेरी हैरियत तक पूछने नहीं आई। और ये कैसा प्यार था तुम्हारा कि तुम 3 साल मुझसे दूर रही पर कभी मेरी याद तक नहीं आई तुम्हें? मुझसे वापस मिलने पर भी तुम्हारे चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट तक नहीं दिखी मुझे, और तुम हमेशा बस अपनी तीखी जुबान से निकले तीरों से मेरे दिल को घायल करती रहीं, हर बार बड़ी ही बेरहमी से मेरे प्यार भरे दिल को ठुकरा कर मुझे खुद से दूर करती रहीं। तो मैंने आपको इन सब के पीछे की वजह बताई तो थी, फिर आप ऐसे कैसे कह सकते हैं मुझे? धृति ने चौंकते हुए हैरानी से कहा, फिर मासूम सी शक्ल बनाए बेचारगी से उसे देखने लगी, तुम कुछ भी क्यों ना कहो, पर मुझे तो नहीं लगता कि तुम्हें कभी एक सेकंड के लिए भी मुझसे मोहब्बत हुई है। मोहब्बत तो छोड़ो, तुम्हें तो मेरी परवाह तक नहीं है। अब भी तुम मुझसे प्यार के कारण मेरे साथ जाने को तैयार नहीं हुई हो। अगर ऐसा होता तो तुम बहुत पहले मान गई होती। अर्णव ने एक बार फिर धृति पर तंज कसा, जिससे धृति झिलस उठी। आपको मुझ पर विश्वास नहीं है? जब मैंने तुमसे कहा था कि मुझे तुमसे मोहब्बत है, तो तुमने उसे गिल्ट का नाम दिया था। मैं भी ये कह सकता हूँ, विश्वास तो पहले तुमने भी नहीं किया था मेरा, तो मैं कैसे कर लूँ? अर्णव की दलील सुनकर वो उलझन में पड़ गई। तो आप मुझ पर विश्वास कैसे करेंगे? तुम्हें मेरी मोहब्बत पर विश्वास कैसे हुआ था? अर्णव ने धृति के सवाल के बदले उल्टा उसी से सवाल कर लिया। धृति कन्फ्यूज निगाहों से उसे देखने लगी। आपकी बातें, व्यवहार, देखने का अंदाज, सबसे आपकी मोहब्बत जाहिर होती थी। जिस तरह आप मेरा ख्याल रखते थे, मेरी छोटी बड़ी ज़रूरतों और ख्वाहिशों को पूरा करते थे, मुझे खुश रखने की कोशिश करते थे, मेरी परवाह करते थे, मुझे हर मुसीबत से बचाने पहुंच जाते थे, मुझे परेशानी में देखकर बेचैन हो जाते थे, मेरी चिंता करते थे, मुझे ढूंढते ढूंढते विवान के फार्म हाउस तक पहुँच गए थे, मेरे लिए उससे लड़ाई की थी, मुझे तकलीफ़ पहुँचाने वालों को सज़ा देते थे, मेरे लिए खुद को बदलने लगे थे, मेरी खुशी के लिए मुझसे दूर होने को तैयार हो गए थे। मुझे एहसास हो गया था कि आप सच में मुझसे मोहब्बत करने लगे हैं। तो अब तुम्हारी बारी है, ऐसा कुछ करो जिससे मुझे तुम्हारी मोहब्बत पर विश्वास हो जाए। मैं ऐसा क्या करूं? धृति आंखें बड़ी बड़ी किए उलझन भरी नजरों से उसे देखने लगी। मुझे क्या पता, ये तो तुम्हें देखना है कि तुम ऐसा क्या करोगी जिससे मुझे तुम्हारी मोहब्बत पर विश्वास हो जाए। अर्णव ने कंधे उठाते हुए लापरवाही से जवाब दिया। धृति सोच में पड़ गई और उसे यूं उलझा देखकर अर्णव मंद मंद मुस्कुराने लगा। बाहर दरवाजे के पास खड़ा कबीर, जो काफी देर से उन दोनों को देख रहा था, अर्णव को मुस्कुराते देखकर उसके लबों पर भी सुकून भरी मुस्कान फैल गई। उसने डोर खोला और वार्ड में दाखिल होते हुए बोला, अर्णव चल, डिस्चार्ज की फॉर्मेलिटी पूरी हो गई है, डॉक्टर से बात भी हो गई, अब यहाँ से जाने का वक्त आ गया है। कबीर ने तो धृति की मौजूदगी को पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दिया था, जबकि धृति उसके आने पर खुद ही साइड में खिसक गई थी। कबीर की बात सुनकर अर्णव ने निगाहें धृति की ओर घुमाई, जो सर झुकाए खामोश सी खड़ी थी और कुछ घबराई हुई सी भी लग रही थी। चलते हैं, पर हमारे साथ धृति भी जाएगी। कबीर को कही ये बात सुनकर धृति ने चौंकते हुए सर उठाया और हैरानी से आंखें बड़ी बड़ी करके अर्णव को देखने लगी। इतने में अर्णव ने निगाहें उसकी ओर घुमाते हुए आगे कहा, धृति तुम हमारे साथ चल रही हो और मेरे साथ ही रहोगी। अर्णव की बात सुनकर धृति बुरी तरह हड़बड़ा गई। मैं आपके साथ कैसे? मतलब वो कैसे का क्या मतलब है? तुम वाइफ हो मेरी, तुम्हारे पति की ऐसी हालत में तुम्हारा फर्ज है मेरा ख्याल रखना, और उसके लिए तुम्हें मेरे साथ रहना होगा। और अभी तो तुमने खुद कहा था कि तुम्हें मुझसे मोहब्बत है, तो मेरी परवाह भी तो होनी चाहिए। ऐसी हालत में मुझे मेरे हाल पर छोड़ दोगी, इतनी खुदगर्ज मोहब्बत है तुम्हारी। अर्नव ने दाव चला और धृति को अपनी बातों में उलझा दिया। धृति पलटकर कुछ कह न सकी, पर परेशान निगाहों से उसे देखने लगी। तुम पूछ रही थी ना कि तुम ऐसा क्या करोगी जिससे मुझे तुम्हारी मोहब्बत पर विश्वास हो जाए, तो मैं एक मौका दे रहा हूँ तुम्हें। याद है जब जब तुम बीमार पड़ती थी तो मैं कितना ख्याल रखता था तुम्हारा? अर्नव का सवाल सुनकर धृति ने झट से सहमति में सर हिला दिया। तो अर्नव ने आगे कहना शुरू किया, इस वक्त मैं बीमार हूँ तो अब मौका है तुम्हारे पास। ख्याल रखो मेरा, मेरी पत्नी होने की जिम्मेदारी निभाओ, साबित करो अपनी मोहब्बत और साथ में और नई तरीके भी सोच लेना। जब पास रहूंगा तो तुम्हारे लिए मुझे अपनी मोहब्बत का एहसास करवाना आसान होगा। अब बोलो, साथ चलोगी या नहीं? अर्नव ने एक बार फिर उसे अपनी बातों में उलझा लिया। धृति के पास अब इनकार की कोई वजह नहीं रह गई थी, तो उसने सर झुकाते हुए गर्दन हिलाते हुए हामी भर दी। तीनों वार्ड से बाहर निकले। अर्नव के पैर में अब भी प्लास्टर लगा था, तो कबीर उसे सहारा देते हुए बाहर लाया था और दूसरी तरफ से अर्नव ने धृति के हाथ को थामा हुआ था। बाहर आते ही धृति की नज़र मृणाल पर गई और उसके आगे बढ़ते कदम रुक गए। अर्नव ने सर घुमाकर उसे देखा। ठीक उसी वक्त धृति ने भी निगाहें उसकी ओर घुमाते हुए आंखों ही आंखों में एक रिक्वेस्ट की, जिसे समझते हुए अर्नव ने उसके हाथ को छोड़ दिया। धृति आगे बढ़कर मृणाल के गले से लग गई। थैंक यू मृणाल, थैंक यू सो मच, इन दिनों तुमने बहुत साथ दिया मेरा, थैंक्स अलॉट। एहसान तो नहीं किया, बस अपना फर्ज निभाया है। और हमारे बीच थैंक यू सॉरी कब से आ गया? पहले तो मृणाल मुस्कुराया, पर आखिर में उसने नाराजगी से आंखें चढ़ाई और उसके इस अंदाज पर धृति पेसाख्ता मुस्कुरा उठी। इतने दिनों में पहली बार धृति को यूं मुस्कुराते देखकर मृणाल भी मुस्कुरा उठा। यूं ही मुस्कुराती रहा करो, और भी ज्यादा खूबसूरत लगती हो। मृणाल की ये बात सुनकर धृति की मुस्कुराहट और भी गहरी हो गई, जबकि अर्नव की भौहें सिकुड़ गई थीं। पल भर बाद मृणाल ने तिरछी नजरों से अर्नव को देखते हुए सवाल किया, अर्नव के साथ जा रही हो? उन्हें अभी मेरी जरूरत है, धृति ने सहमति में सर हिलाया, जिस पर मृणाल ने हल्की उदासी से आगे कहा, फिर तो कुश और मुझसे तुम्हारी मुलाकात नहीं हो सकेगी।
क्यों नहीं हो सकेगी? तुम आना मिलने और कुश को भी लेकर आना। मैं अभी ऑफिस नहीं जाऊंगी, तो उसका ख्याल रख लिया करूंगी। और जब वापस इंडिया चली जाओगी तब क्या करोगी? तुम भी हमारे साथ चलना, और वहां मैं तुम्हारे लिए एक प्यारी सी और तुम्हारी तरह साफ दिल की लड़की ढूंढकर उससे तुम्हारी शादी करवा दूंगी। फिर तुम्हें सर खाने के लिए एक बीवी मिल जाएगी और कुश को माँ, जो हमेशा उसके साथ रहेगी, उससे ढेर सारा प्यार करेगी। धृति की बात सुनकर मृणाल फीका सा मुस्कुरा दिया। अर्नव बड़े ही ध्यान से दोनों की बातें सुन रहा था और उनके चेहरे के भावों को भी नोटिस कर रहा था। वजह तो मैं नहीं जानता, पर अब जब तुमने वापस अर्नव के पास जाने और अपने रिश्ते को एक और मौका देने के बारे में सोच लिया है, तो इतना जरूर कहूंगा कि पास्ट में जो भी हुआ उसे भुलाकर आगे बढ़ना और खुश रहना, मृणाल ने बड़े ही प्यार से उसे समझाया। धृति सहमति में सर हिलाते हुए मुस्कुरा दी। टू बी कंटिन्यूड।